जब ये लोग यूसुफ अलैहि सलाम के पास पहुंचे तो उन्होंने अपने भाई को अपने पास बुलाया और उन्हें बताया कि मैं ही तेरा वो भाई हूं जो खो गया था, अब तो इन बातों का गम न कर जो ये लोग करते हैं। फला तब तईस, इतने सालों बाद आप सोचिए यूसुफ अपने छोटे भाई सगे को मिल रहे, क्या दिल का हाल होगा। हम जब बहुत साल बाद अपने मुल्कों में जाएं, कहते हैं सुनाओ और क्या दुख सुख है, आओ गम करें, आओ जरा बातें करें, और वो क्या करें, ला तब तईस, गम न करो। देखिए गमों को भूलने का एक ही तरीका है कि इनका बार बार तस्करा ना करें। हम क्या कहते हैं, मैं कभी भूल नहीं सकती, मैं तो ये नहीं कर सकती। आप गम पालना चाहते हैं ना, एक बिल्ली पाल लें, वो ज्यादा बेहतर है। पास लोगों को आदत होती है गम पालने की, गम पालकर हम बीमार पड़ जाते हैं। जख्म को आप बार बार उखेड़ेंगे तो क्या होगा, क्रीन बने फिर जख्म उतरे, फिरो तो एक तो खून बहेगा, दूसरी आपकी एनर्जी चली जाएगी। तो मत जाया कीजिए, आपकी सास ने अगर शादी के शुरू में आप पे कोई सख्ती कर दी थी, अल्लाह के लिए उसको माफ कर दें, मोहसिना बन जाए, मत उसका जिक्र करें। बाद जब लोग दुनिया से चले जाते हैं, लोग फिर भी उनको माफ नहीं करते, तो इस तरह की चीजें आपको खुद ही दुखी करेंगी और किसी का इससे नुकसान नहीं होगा। फिर दूसरी बात इससे एक और भी पता चलती है कि जब हम एक ही बात बार बार करते हैं ना, तो उस बात में कहीं ना कहीं मुबालगा जरूर आ जाता है। आपने बंदरों के बारे में सुना होगा कि जब किसी बंदर को चोट लग जाती है तो दूसरे सब बंदर मिलके उसकी आदत को आते हैं, और जब आते हैं ना तो खोल खोल के अपने नाखूनों से उसका जख्म देखते हैं और खोल देते हैं। हमारे भी बाज लोग हैं, पूरी बात वो आपसे खुद सुनेंगे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। मैया ताले घर में जाएंगे, सबसे करीबी से जाके पूछेंगे, अब सुनाओ क्या हुआ था, किसी की तलाक हो गई, घर टूट गया, मंगनी टूट गई, पहुंचेंगे जो बुरका लेकर सर पे, जल्दी से सुनाओ फिर क्या हुआ था, अच्छा फिर कुछ तो होगा, कुछ तो बताएं, कुछ तो बताएं। और अगला नहीं बताना चाहता, कहते नहीं मैं अपनी हूं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। नहीं, फला तब तईस, गम न पालें, या बैठे बैठे आप अपने दिलों के वो सारे गम दूर करें जो भाई बहनों या किसी के दिलों में। आप देखेंगे आपका अपना वेट कम अज कम 5-10 पाउंड कम लगेगा। ये जो हमारा वेट बढ़ता है ना, वो यही बढ़ता है कि हमने दूसरों के गम भी कंधों पर डाले होते हैं। और याद रखिए, रोते लोग किसी को अच्छे नहीं लगते, हंसता ही सबको अच्छा लगता है। दूसरों को सुनाने वाले हमेशा रोते रहते हैं, लिहाजा पॉजिटिव अप्रोच क्या है कि कोई बात नहीं है, अब जो हुआ सो गया, खैर अब दूसरी दफा जाने का वक्त आ गया। फलम मजा खजा हूं, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन भाइयों का सामान लदवाया तो उसने अपने भाई के सामान में अपना प्याला रख दिया। फिर एक पुकारने वाले ने पुकार कर कहा, ए काफले वालों, तुम लोग चोर हो। उन्होंने पलट कर पूछा, तुम्हारी क्या चीज चोरी हुई है। सरकारी मुलाजमों ने कहा कि बादशाह का पैमाना हमको नहीं मिलता। और उनके खिदमतगारों ने कहा, जो शख्स ला कर देगा इसके लिए एक ऊंट के वजन का सामान है, यानी उसको एक ऊंट भर के अनाज जो है वो तोहफे में दे दिया जाएगा, और मैं इसका जिम्मा लेता हूँ। इन भाइयों ने कहा, खुदा की कसम तुम खूब जानते हो, हम इस मुल्क में फसाद करने नहीं आए और हम चोरियां करने वाले लोग भी नहीं है, क्योंकि इस दफा नहीं की थी ना, तो कॉन्फिडेंस देखिए। बंदे ने जब जुर्म नहीं किया होता ना, तो वो रो के धो के हिचकियां लेके आंखों से आंसुओं से हाथ हर तरह से यकीन दिलाते मैंने ये नहीं किया। पिछली दफा अगर आप देखिए, जब आपके सामने मामला था यूसुफ का, तो उस वक्त झूठे थे, सारा वक्त वहां गुजार के दिन का जंगल में रात को गए ताकि हमारे फेस एक्सप्रेशंस भी ना कोई देख सके। तो इंसान झूठा होता है ना, तो वो अपने आप को दूसरों की नजरों से दूर करना चाहता है, जबकि यहाँ सच्चे थे, कहने लगे हम चोर नहीं है। खैर उन्होंने कहा, अच्छा अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो चोर की क्या सजा है। उन्होंने कहा, इसकी सजा जिसके सामान में चीज निकले वो आप ही अपनी सजा में रख लिया जाए। हमारे यहाँ तो ऐसे जालिमों को सजा देने का यही तरीका है। यानी उस वक्त दीन इब्राहिमी में जो शरीयत थी वो क्या थी कि अगर चोर किसी की चोरी कर ले और चोरी पकड़ी जाए, 1 साल तक उसको उस शख्स के पास रहना पड़ता है एज अ गुलाम, उसकी खिदमत करते हुए। बादशाह के मुल्क में अभी इस्लामी निजाम नहीं था, वहां चोरी की सजा कुछ और थी। तो यूसुफ ने एक गैर मुस्लिम मुल्क में रहते हुए इस्लामी सजा को अप्लाई किया। बड़ी जुरत की बात है। मैं फिर यहां रुक के आपको अपने आप को यकीन दिलाऊं कि जब तक हम गैर मुस्लिम मुल्कों में रहते हुए अपने कवानीन के मुताबिक अपने फैसले करवाना नहीं सीखेंगे, हमारी इज्जत नहीं होगी। जब आप कहते हैं कि रिलीजियस फ्रीडम है, तो फिर आपके ये होनी चाहिए कि आपकी मौत की सूरत में आपका विरसा एक ही जगह सपना चला जाए, बल्कि आपकी इस्लामी बांट हो। तलाक और दूसरी सूरतों में, डाइवोर्स की सूरत में बच्चा किसके पास रहेगा, इसमें इस्लामिक क्लॉज को लें। और इसके लिए हमें अपने लॉयर बच्चे चाहिए। हमारे मुसलमानों में से जिन्होंने लॉ पढ़ा और जिन्होंने वाकई हकीकत में इतनी मेहनत करके ये प्रोफेशन लिया, उनको इसका हक देना है। वो इस्लामिक लॉज को पढ़े, शरिया को पढ़े, अब 1-2 साल शरिया को जाके पढ़े, उसके बाद काम करें और अपना राइट लें। क्योंकि जिस तरह लॉयर्स जाके बात कर सकते हैं, उनको पता है कहाँ जाके बात करनी है, किससे कहना है, वहां कोई और नहीं कर सकता। तो ये एक इस्लाम की आज के दौर में बहुत बड़ी खिदमत होगी। और ये बात कहते हुए मैं इतनी पुरउम्मीद हूँ कि मैं फिर एक बड़ा खूबसूरत जुमला बोल दूं कि मुझे उम्मीद है कि हम नॉन मुस्लिम मुल्कों में इस्लामिक लॉ प्रूव करवा लें इसकी बनिस्बत कि हम अपने मुल्कों में करा सकें। इज इट ट्रू और नॉट? लोग कहते हैं, कल किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि लगता है कि आपके इन मुल्कों में तो बहुत ही मस्जिदों की इज्जत है, यहाँ तो ये बहुत है, यहाँ तो इस्लाम ज्यादा है, यहाँ तो आप लोग ज्यादा अच्छी तरह काम करते हैं, हमारे मुल्कों में ऐसे नहीं है। मैंने कहा इज ट्रू, क्या आप इसकी गवाही देते? सच बात है। देखिए, बात है बुरी दुश्मन की हो या अपने की हो, उस बुरी को बुरी और अच्छी को अच्छा कहना है। जितने अमन सुकून चैन और अल्लाह की रहमत से आप और मैं यहाँ दीन का काम करते हैं, इतना तो शायद आप अपने बहुत करीबी मुस्लिम मुल्कों में नहीं कर पाते, वहां इससे ज्यादा पाबंदियां। तो जिन्होंने आपको इतना हक दिया, क्या वो आपको इससे ज्यादा हक नहीं देंगे? वो कहते ना छेड़ो ना छोड़ो, तुम हमें कुछ ना को, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते। उनको क्या लगे आपने इस्लाम के मुताबिक किसी की विरासत बांटी है या दूसरे कानून से? सिर्फ मुझे और आपको उठना पड़ेगा, और उठने के लिए अगली सूरत रात पढ़नी पड़ेगी। ऐसे लगता है कि बंदे का दिल करते मैं बैठा हूं ना तो उठ जाऊं, खड़ा हूं तो खड़ा हो जाऊं। वो किसी की बात कि कोई काम था तो उन्होंने किसी को फोन किया, कहा कि लेटे हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो चल पड़ो, चल रहे हो तो दौड़ना शुरू कर दो, जल्दी पहुंचो, बड़ा जरूरी काम है। मुझे उनका ये जुमला इतना अच्छा लगा कि मैंने कई दफा अपनी मीटिंग्स में वॉलंटियर्स और जो साथी उनको यही कहती हूँ, बैठी है तो खड़ी हो जाए, खड़ी है तो चले, चले तो भागे, क्योंकि आज हम मुसलमानों को अपनी पोजीशन बदलनी है। आप में से हर एक अपने आप से पूछे, क्या मेरा स्टेटस है? सोई हुई हूँ, हाथ रख के घुटनों पे बैठी हूँ, सीने पे हाथ बांध के किसी चीज के ऊपर हूँ, टांग पे टांग रख के बैठी हूँ, किस मूड में हूँ? हमें जितने ज्यादा काम होते हैं ना, हमारे बॉडी पोस्चर से पता चलता है हम कितने बिजी हैं। रात को पार्टी हो आपके घर में और आप देखिए जरा, सारा दिन आप बिस्तर पे टांग रख के लेट के नॉवल पढ़ती हैं कि नहीं पढ़ती? फिर आप देखते हैं, आप काउच पे चाय का कप लेके सुर्खियां भर के फैशन मैगजीन देखती हैं कि नहीं देखती? बस जिस दिन हमें इस बात का यकीन आ गया, लॉट टू डू, काम अभी बहुत है, तो अभी फुर्सत नहीं है, अभी काम बहुत है, दुनिया में तौहीद का इतमाम करना है, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा हम भागने लगेंगे। और ये सारे काम करके हम अपने ऊपर तो रहम करेंगे, इस दुनिया पे इंसानियत पे भी रहम करेंगे। तो लिहाजा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस मुल्क में इस्लामी सजा लगवाने के लिए यही तरीका इख्तियार किया, और वही हुआ जिसका डर था। जब तलाशी ली गई तो वो सामान निकल आया। कैसे? तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई से पहले उनकी थैलियों की तलाशी लेनी शुरू की, फिर अपने भाई की थैली से गुमशुदा चीज बरामद कर ली। इस तरह ने यूसुफ की ताईद अपनी तदबीर से की। यहाँ पर हिकमत और फरासत को समझे, बजाहर की बातें ना समझ आने वाली हैं जो इतनी जल्दी में छेड़ने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन याद रखिए, अल्लाह मोमिन को ऐसी हिकमतें सिखा देता है कि वो दूसरों से ज्यादा निकियां ले जाता है। वल्लाही, आप सब सदका करेंगे, लेकिन दीन के साथ आप जब सदका करेंगे, आपके उस सदके की जगह कई गुना अच्छी बढ़ चुकी होगी। आम लोग किसी जगह रह जाते हैं, डिब्बे में पैसे डाल के अपने सदके ज़कात से फारिग हो चुके होंगे। जब अल्लाह आपको दीन की समझ देता है, आपको अल्लाह का कानून समझ आता है, तो आप 10 दफा सोच के करते हैं। तो हिकमतों के साथ अल्लाह का दीन का काम करना थोड़े में ज्यादा बरकत ले आता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतने हालात से क्यों गुजारा? ताकि उनको दुनिया की गर्मी सर्दी का पता लग जाए। और इस तरह से हुआ क्या, उनका ये काम न था कि बादशाह के दीन यानी मिस्र के शाही कानून में अपने भाई को पकड़ता, इल्ला ये कि अल्लाह ही सच है। आज हमें ऐसे लीडर्स की जरूरत है, यूनिवर्सल लेवल पर ऐसे मुस्लिम लीडर अगर चंद भी मिल जाए ना, जो यूसुफ जैसे हकीम हो, पूरी दुनिया के लॉस में से लूप होल्स निकाल के यकीन कीजिए कि वो मुसलमानों को बेनिफिट्स दिला सकते हैं, और बिल्कुल ट्रू राइट वे में। लेकिन हमारे पास इतना इंटेलेक्चुअल माइंड है तो बहुत, लेकिन अफसोस है कि वो कुछ और कमा रहा है, उसको दीन से ज्यादा भी दुनिया कमानी है। ये मत सोचिए कि मुसलमान सारे बिल्कुल बेकार है, जितना मुसलमानों के पास टैलेंट है शायद ही हो। मुझे याद है आज से कुछ 6-7 साल पहले मैं टोरंटो गई थी, अगर सुनने वालों में कोई ऑनलाइन से सुन रहा है तो वो भी इसकी तस्दीक कर सकता है कि हमें एक जगह से जब गुजारा गया तो वहां एक रोड पे एक मुसलमान का नाम था, पाकिस्तानी नाम था और ब्रदर का नाम था। तो उन्होंने बताया कि ये चूंकि एक बहुत बड़े और शायद हमारे मुल्क के एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर कदीर थे गालिबन कौन, तो उनके नाम पे रोड थी। इसी तरह टोरंटो में ही हम एक जगह गए तो वहां एक मुझे याद है शालीमार सेंटर था, तो रोड का नाम शालीमार रोड है, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यहाँ ये काम हो रहा है, वो एक्सेप्ट करते हैं। तो जिन मुसलमानों ने अगर कोई दुनिया को खैर दी तो लोगों ने उनको इज्जत दी। तो ये कैसे हो सकता है कि हम कोई काम करेंगे तो जी ये लिख रही है हमना कि शालीमार सेंटर, वहां एक मुस्लिम की जगह, तो उन्होंने उस पर उस रोड का नाम शालीमार रोड कर दिया या कुछ इस तरह की चीज। तो मत सोचिए कि सब आपके दुश्मन है, सब दुश्मन नहीं है। हमें पहले यकीन होना चाहिए कि हम क्या करेंगे, और अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं, हम जिसके दर्जे चाहते हैं बुलंद कर देते हैं। और एक इल्म रखने वाला ऐसा है जो हर साहिब इल्म से बालातर है, और वो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह की ज़ात से बड़ा कोई अलीम वाला नहीं है। जो अपने इल्म की लिमिटेशन को जाने वो आलिम है। मेरे पास इल्म बहुत थोड़ा है, ये मेरे आलिम होने की अलामत होगी, और मैं अपने नाम के साथ आलिमा, फाजिला, हाफिजा, मुफ्तिया, फलां लगा दूं तो मान लीजिए कि हर इल्म वाले के ऊपर एक और इल्म वाला है। और हकीकत यह है कि अल्लाह ताला से बड़ा कोई साहिब इल्म नहीं है, और अल्लाह जिसके दर्जे बुलंद करे। इसको हाईलाइट कीजिएगा, नरफो दराजात मन नशा। इस पे एक रिवायत मिलती है कि इल्म अपने साहिब की शान बढ़ा देता है। जी ये भी मैंने देखी है, ये अब देखे लिखना शुरू हो गया ना, तो मैं भी इनको देख रही हूँ। खान स्ट्रीट इन शिकागो मैं खुद जा चुकी हूँ। अब ये खान सारे जितने वो खुश हो जाए, वहां पता नहीं खान्स रहते होंगे। जी
एक नूर स्ट्रीट है ओहायो,
नूर स्ट्रीट है ओहायो में, माशाल्लाह। आप भी कोई गवाही दे दें, किसी को
मोहम्मद
पता है।
अली
मोहम्मद अली रोड भी है
जहाँ बॉर्न हुए
जहाँ वो बॉर्न हुए थे, माशाल्लाह। जी नासिर रोड, जावेद रोड, ये कह रही है कुबा वे है एक और जहाँ की ये जगह कुबा वे। तो आप देख सकते हैं ना कि फिर कोई किसी को आपसे चिढ़ थोड़ी है। सिर्फ आप अपनी कोशिश करें, और जब मुसलमान इल्म हासिल करेंगे तो दर्जे बुलंद होंगे। दीन का भी इल्म, दुनिया का भी इल्म, और अल्लाह इल्म की वजह से वाकई जो इज्जत देता है वो किसी और चीज़ पे नहीं देता। अब भाइयों के लिए एक मुश्किल आ गई कि यूसुफ के उस कानून के मुताबिक बिन्यामीन को चोरी किए जुर्म में वहां रहना था, लेकिन भाई अब क्या करते, बाप को तो कुछ और कहकर आए थे। तो अब यहां जरा उनकी देखी, यहां आप एक जुमला लिख लें आयत 77 में, मकाफाते अमल। मकाफाते अमल क्या है? जो करेंगे वो भरेंगे। कल तक जो काम इन्होंने अपने इरादे से किया था, अब उसी मजबूरी में इनको जाना पड़ गया। قالوا يسرق فقد سرق خله من قبل। इन भाइयों ने कहा ये चोरी करे तो कोई ताज्जुब की बात भी नहीं। फिर देखिए नेगेटिव जुमला, इससे पहले इसका भाई यूसुफ भी चोरी कर चुका है, और यूसुफ उसकी ये बात सुनकर पी गए और हकीकत इन पर ना खोली, बस जेरे लब इतना कहकर रह गए, बड़े ही बुरे लोग हो तुम, मेरे मुंह दर मुंह मुझ पर तो जो इल्जाम लगा रहे हो इसकी हकीकत को अल्लाह ताला खूब जानता है। इमेजिन कीजिए आप और मैं होते यूसुफ की जगह, और हमारे मुंह पे कोई हमें कहता तुम चोर थे, बचपन में चोरियां करते थे, घर की रोटियां जाके फकीरों को खिलाते थे, मुर्गी का अंडा जाके फकीर को दे आते थे, ये बातें मिलती है रिवायत में। इस बुनियाद पे उन्होंने यूसुफ को चोर कहा था। तो आप बताइए जरा, हम कहते ठहर जाओ मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन यूसुफ पी गए। ये है हिकमत, हर इल्जाम का जवाब फौरी नहीं देते। याद रखिए जो लोग किसी की 10 बुरी बातें सुनकर अपने दिल में रख के पी जाते हैं ना, अल्लाह उनको हिकमत देता है। जिस वक्त शौहर आपको गुस्से में कुछ कहे ना, बस वो वक्त होता है आपके हकीम होने का और हिकमतें और फरासते लेने का। पी जाए एक दफा, किसी ज्यादती करने वाले को बर्दाश्त कर ले, दैट्स इट। जो ज्यादती कर रहा होता है ना, उसको पता होता है मैं ज्यादती कर रहा हूँ, और उसको ये भी पता होता है कि इससे आगे आप भड़केंगी। जब आप भड़केते हैं ना तो उसका गिल्ट खत्म हो जाता है, कहता है मैंने भी कुछ किया तो इसने भी कर लिया, और आप जरा चुप, वो बोल रहे हैं ठीक ओके फाइन जैसे आप कहें ओके गुड। आप देखिएगा साथ ही आवाज ठंडी होनी पड़ेगी, ढीला होना पड़ेगा। जब तक आप लोगों की गलत बातों पे खामोश रहना नहीं सीखेंगे, लोग आपको गलत कहेंगे। ये जुमला लिख लें आज उम्मत मुस्लिमा के लिए इंटरनेशनल लेवल पे, कहो हमें क्या कहते हो, मैं तो नहीं कहती खुद को लेकिन जो लोग कहते हैं कहो, ठीक ओके फाइन, ये भी हूँ वो भी हूँ, ये भी करते हैं हम, ये भी करते हैं हम, ऐसे इट्स ओके ठीक है, एनीथिंग एल्स ओके, जज़ाकअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, ला नबतहिल जाहिलीन, हम जाहिलों के मुंह नहीं लगते, अल्लाह नौस्ती बैत। एक दफा निकल के तो आइए, फिर देखिए जरा दूसरों को खुद समझ आएगा। अल्लाह ने हर एक के अंदर एक बिठाया हुआ चौकीदार, आके पढ़ेंगे सूरत कयामत में, जिसका नाम नफ्से लवाम है। बर्दाश्त करें, और ये सूरत आपको बार बार बर्दाश्त करना सिखा रही है। यूसुफ का किरदार हम सब के लिए एक मिसाल है, किस तरह उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले इल्जाम को धोया। अब देखिए भाइयों की कम इल्मी, एक तरफ उनको चोर कह रहे और दूसरी तरफ कालू या अय्युहल अजीज, और उन्होंने कहा है सरदार अजी इक्तदार अजीज। ये होता है इंसानों के, एक तरफ वो आपको बुरा कह रहे हैं और दूसरी तरफ लकब दे रहे हैं और सबके लाके लगा रहे हैं। क्या कहने लगे, इसका बाप बहुत बूढ़ा आदमी है, उसकी जगह आप हम में से किसी को रख लीजिए, हम आपको बड़ा ही नेक नफ्स इंसान पाते हैं। यूसुफ अलैहि सलाम ने कहा पनाह बखुदा, दूसरे किसी ऐसे शख्स को हम कैसे रख सकते हैं जिसके पास हमने अपना माल पाया है, इसको छोड़कर हम अगर दूसरे को रखेंगे तो हम जालिम होंगे। जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से मायूस हो गए तो एक गोशे में जाकर आपस में मशवरा करने लगे। अब याद कीजिए वो वक्त जब यूसुफ के कत्ल की साजिशें थी, और उस वक्त भी दूसरों ने कुछ कहा था, लेकिन एक ने कहा था कि ला तख्तुलु यूसुफ, यूसुफ को मारो नहीं, हाँ उसको किसी कुएं की गहराइयों में डाल दो, या फिर वही बड़ा भाई बोला। इनमें से जो सबसे बड़ा था वो बोला, तुम जानते हो कि तुम्हारे वालिद तुमसे खुदा के नाम पर अहदो पैमान ले चुके हैं, तुम्हारे कह रहे हैं अपने नहीं कह रहे, ये भी इनका एटीट्यूड है। और इससे पहले यूसुफ के मामले में जो कुछ तुम कर चुके हो वो भी तुमको मालूम है। यहां से पता चला गुनाह भूलता नहीं है, गुनाह की कसक जो होती है ना ये इंसान के दिल से कभी नहीं जाती, इल्ला ये कि वो सच्ची तौबा करके उससे बहुत ज्यादा नेकियां कर ले। और फिर कहने लगे, अब मैं तो यहां से हरगिज ना जाऊंगा जब तक मेरे वालिद मुझे इजाजत ना दें, या फिर अल्लाह ही मेरे हक में कोई फैसला फरमा दे कि वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। तुम जाकर अपने वालिद से कहो कि अब्बा जान आपके साहबजादे ने चोरी की है। जुमला नोट कीजिए, ये नहीं कहा हमारे भाई ने चोरी की है। यहां से आपको पता चल रहा है कि वाकई फिर अगर याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ से ज्यादा मोहब्बत करते थे तो उसकी वजह क्या है। हमने इसे चोरी करते हुए देखा नहीं, जो कुछ हमें मालूम हुआ बस हम वही बयान कर रहे हैं, और गैब की निगेबानी तो हम ना कर सकते थे। आप इस बस्ती के लोगों से पूछ लीजिए जहां हम थे, इस काफिले से दरियाफ्त कीजिए जिसके साथ हम आए हैं, हम अपने बयान में बिल्कुल सच्चे हैं। सच्चे थे तो क्या कहा, जरा इर्द गिर्द वालों से भी पूछें। तो भाई जब यूसुफ को कत्ल करके आए थे तो क्यों नहीं अब्बा को ले गए जाए वकू पे कि अब्बा जी देखे ये जगह जहां भेड़िया हमारे प्यारे भाई को खा गया, फिर क्यों नहीं बोले, झूठे थे। तो जब सच्चा इंसान होता है ना, हर मुमकिन कोशिश करके वो लोगों को अपनी सच्चाई का यकीन दिलाता है।